यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जन वल्लभ गिरिवर धारे गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारे यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यमुना तीर वनचारे वनचारे जय राधा माधव कुंज बिहारे जय राधा माधव कुंज बिहारे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम Rama Rama Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Thank you. जय राधा गोकुल नंद राधा गोकुल नंद राधे जय गौरानिताय जय गौरानिताय जय गौरानिताय जय गौरानिताय जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ बलदेवा जय सुभद्रा जय जय प्रभुपाद 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 जय प्रभुपाद नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल नित्य गौर हरि बोल
जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर सतहिष्ठ वाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्री श्री राधा गोकुलानंद की जय। श्री श्री गौर निताय की जय। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रामयी की जय। निताय गौर प्रेमानंदे समवेत भक्त वृंद की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। श्री श्री गुरु गौरांग की जय। ओम ज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदांतिकं। वंदेहं श्री गुरुः श्रीयुत पदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वंदे श्रीगुरुं दीनतारिणं। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम् आराध्य भगवान् व्रजेशतनयस्तद्धाम वृन्दावनम् रम्या काचिदुपासना व्रजवधो वर्गेण कल्पिता श्रीमद्भागवतं प्रमाणममलं प्रेमापुमर्थो महान् श्रीचैतन्यमहाप्रभोर्मतमिदं तत्रादरः न परः हे कृष्णकरुणा सिन्ध दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमोऽस्तु ते तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण पुरुषोत्तम अधिक मास के अवसर पर इस भागवत कथा के छठे दिन में आपका हार्दिक स्वागत है। पिछले कई दिनों से भीष्म देव के चरित्र, उनकी भक्ति और महाभारत में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका के ऊपर चर्चा चल रही थी। इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। कल कथा यहाँ पर रुकी थी कि युद्ध शुरू होने ही जा रहा है और दुर्योधन ने भीष्म देव से कहा कि हमारी सेना और पांडवों की सेना दोनों का विश्लेषण कीजिए, हमारे शक्तियां हमारी कमजोरियां इनका वर्णन कीजिए। तो भीष्म देव ऐसा ही करने लगे। कौरव सेना का वर्णन करने के बाद पांडव सेना का वर्णन करने लगे और अंत में पहुंचे शिखंडी के विषय तक और कहने लगे कि हे राजन, मैं अन्य सभी के साथ युद्ध कर सकता हूं परंतु शिखंडी के साथ नहीं कर सकता। जब दुर्योधन ने जानना चाहा कि इसके पीछे कारण क्या है तो भीष्म देव ने सारा इतिहास बतलाया। संक्षेप में इस इतिहास को हम पहले भी बता चुके हैं। अंबा जिसको कि भीष्म देव उठा ले आए थे अंबिका और अंबालिका के साथ विचित्र वीर के साथ विवाह करने के लिए, तैयार नहीं हुई इस विवाह के लिए क्योंकि उसने अपना हृदय शाल्व राजा को दिया हुआ था। भीष्म देव ने ब्राह्मणों के साथ विचार विमर्श करके अम्बा को अपने रास्ते में जाने के लिए अनुमति दे दी। शाल्व के पास वापस जाकर खाली हाथ लौटना पड़ा अम्बा को, क्योंकि शाल्व ने स्वीकार नहीं किया अम्बा को, क्योंकि भीष्म देव उसे उठाकर ले गए थे। वो तपस्या करने लगी। तपस्या करते करते होत्रवाहन नाम के उनके एक पूर्वज थे जो राज ऋषि थे, उनसे मिली। वो उनको परशुराम के पास ले गए। परशुराम को दया आई और कहा कि मैं भीष्म देव को अवश्य तुमसे विवाह करने के लिए प्रेरित करूंगा, अन्यथा भीष्म को मुझसे युद्ध करना होगा। भीष्म देव के ब्रह्मचर्य का संकल्प या व्रत दृढ़ था, भीष्म देव तैयार नहीं हुए। भीष्म और परशुराम के बीच में भीषण युद्ध हुआ 23 दिनों तक। दोनों बराबर के थे, किसी का विजय नहीं हुआ, दोनों विजयी हुए। फिर परशुराम ने अम्बा से कहा कि अब इसके बारे में मैं कुछ नहीं कर सकता। तो अम्बा आगे चल के यमुना के तट पर आई और वहां पर भयंकर तपस्या करने लगी। ऐसे 12 वर्षों तक अम्बा की तपस्या चली, ऐसी तपस्या जो कि इस कलयुग में बिल्कुल संभव नहीं है। एक साल पे एक पैर पे खड़े होना, जल पान भी नहीं करना, आहार नहीं ग्रहण करना, और एक साल के बाद फिर एक सूखा पत्ता खा लेना, ऐसी सब चीजें अम्बा ने की। उद्देश्य केवल एक था कि किसी न किसी तरह से मुझे भीष्म की हत्या करानी है। अनेक ऋषि मुनियों ने और अम्बा के सगे संबंधियों ने प्रयास किया अम्बा को अपने संकल्प से दूर हटने के लिए, परंतु अम्बा ने किसी की बात नहीं मानी। आगे चल के फिर और ऋषि मुनियों के साथ इधर उधर चलती गईं। अंततः मुनियों ने बताया कि शिव जी ही हैं जो आपकी इच्छा पूर्ण कर सकते हैं। बहुत कड़ी तपस्या करने के बाद शिव जी वहां पर प्रकट हुए। शिव जी ने पूछा कि क्या वरदान चाहिए तुम्हें। उन्होंने कहा कि मुझे भीष्म के मृत्यु का कारण बनना है। तो शिव जी ने कहा तथास्तु, अगले जन्म में तुम बन जाओगे महाराज, द्रुपद के घर में तुम्हारा जन्म होगा और फिर तुम भीष्म देव की मृत्यु का कारण होगे। तुम बहुत शूरवीर महारथी हो जाओगे। तो इस वरदान से हौसला बढ़ गया अम्बा का। अग्नि बनाई और अग्नि में कूद पड़ी। अग्नि में कूदते कूदते ये घोषणा की कि मैं भीष्म देव की मृत्यु का कारण बनने वाली हूं। कितना दृढ़ संकल्प। तो अगले जन्म में द्रुपद राजा और उनकी पत्नी के संतान के रूप में जन्म लिया अम्बा ने। द्रुपद राजा और उनकी पत्नी शिव जी से काफी समय से याचना कर रहे थे एक संतान के लिए, परंतु काफी समय तक ऐसे कुछ हुआ नहीं। अंततः शिव जी प्रकट हुए और उन्होंने वरदान दिया कि आपकी एक पुत्री होगी जो आगे चल के पुत्र हो जाएगा। तो द्रुपद राजा ने कहा, नहीं नहीं, मैं तो केवल पुत्र चाहता था, ऐसे नहीं चाहता हूं कि कोई पुत्री हो जो बाद में पुत्र बने। परंतु शिव जी ने कहा, जो भाग्य में है वही होना है और यही होकर रहेगा। तो कन्या का जन्म हुआ, इसका नाम रखा गया शिखंडी। वैसे द्रुपद राजा की रानी जो थी उनको पूर्ण विश्वास था शिव जी के वरदान में, उनके वचन में। उन्होंने कहा कि हमारी संतान एक कन्या भी क्यों न हो, इसे एक पुत्र की तरह ही बड़ा करना चाहिए। तो लड़के जैसे वस्त्र पहनाए, लड़के जैसे एक राजकुमार जैसे प्रशिक्षण और शिक्षण दिलाया। सारे राज्य में यही घोषणा की गई कि एक राजकुमार का जन्म हुआ है। केवल गिने चुने लोगों को ये पता था कि वास्तव में ये पुत्री है, पुत्र नहीं है। और धनुर्विद्या आदि में भी शिखंडी काफी निपुण हो गई। विवाह का समय आया, ध्रुपद राजा सोच रहे थे अब क्या किया जाए, विवाह कैसे किया जाए। तो फिर उनकी रानी ने कहा, नहीं, एक राजकुमारी से ही विवाह करना चाहिए। ध्रुपद राजा हैरान हो गए, ऐसे कैसे हो सकता है। परंतु ध्रुपद राजा की पत्नी को शिवजी के वचनों पर पूर्ण विश्वास होने के कारण ध्रुपद राजा भी मान गए। हिरण्यवर्मन नाम के एक राजा थे, उनकी पुत्री थी, तो उनकी पुत्री के साथ शिखंडी का विवाह हो गया। और जैसे कि हम अनुमान लगा सकते हैं, ज्यादा देर बीतने की आवश्यकता नहीं हुई, जबकि हिरण्यवर्मन की पुत्री को पता चला कि उनके जो तथाकथित पति है पुरुष नहीं है, स्त्री है। अब क्या करेगी बेचारी, अपने पिताजी को बता दिया कि आपने किनसे मेरी शादी करा दी, ये तो स्त्री है, महिला है। तो राजा हिरण्यवर्मन आग बबूले हो गए कि मेरे साथ इतना बड़ा धोखा, और बड़ी सेना लेकर ध्रुपद राजा के राजधानी कौंडिल्य की ओर बढ़े। आगे उन्होंने संदेश भेजा कि मैं आ रहा हूं बड़ी सेना से के साथ में आपको सबक सिखाने के लिए, क्योंकि आपने मेरे साथ ऐसे अन्याय और धोखा किया है। उधर ध्रुपद राजा बड़े हैरान हो गए, अब क्या किया जाए। अपने पत्नी से विचार विमर्श किया, देखो तुमने जबरदस्ती ऐसे विवाह करवा दिया, अब क्या किया जा सकता है, अब तो हर सर्वनाशी होना है। तो रानी ने कहा, चलो और कोई उपाय नहीं है, देवों की पूजा करते हैं। देवों की पूजा करने लगे, तब तक शिखंडी ने सोचा, ये सब कुछ मेरे कारण से हो रहा है। यदि मैं यहां से जंगल में चले जाऊं तो फिर इस राज्य का नाश नहीं होगा। तो वो चली गई जंगल में निराश होकर। उस जंगल में एक यक्ष रहता था जिसका नाम था स्थून। तो स्थून ने देखा कि ये राजकुमारी आई है, वैसे राजकुमार के पोशाक पहने है लेकिन है राजकुमारी, बड़ी दुखी लग रही है। तो दया आई स्थून के हृदय में, वो चले गए, पूछा कि अरे देवी क्या समस्या है, इतने दुखी और निराश क्यों लग रही हो। तो अपनी दुख भरी कहानी बताई शिखंडी ने। तब स्थून ने कहा कि क्या उपाय है इसके लिए। तो शिखंडी ने कहा कि उपाय तो एक ही है, मेरा शरीर अब स्त्री का शरीर है, यदि मेरा शरीर पुरुष का बन जाए तो फिर ये समस्या मिट जाएगी। परंतु ये कैसे हो सकता है, शिखंडी सोच रही थी। तो यक्ष ने कहा, कोई बात नहीं, मैं सारे वरदानों को प्रदान करने में समर्थ हूं, मैं यक्षों के प्रमुख कुबेर का सेवक हूं, इसलिए मैं समर्थ हूं। तो ठीक है, हम ऐसा करते हैं, मेरा पुरुषत्व मैं तुम्हें प्रदान करता हूं और मैं स्त्री बन जाता हूं। परंतु जैसे ही राजा हिरण्यवर्मन वापस लौट के चले जाएंगे फिर मेरा पुरुषत्व तुम्हें लौटाना होगा। तो तैयार हो गई शिखंडी, शिखंडी पुरुष बन गई और स्थून स्त्री बन गई। अब वापस गए तब तक राजा हिरण्यवर्मन महाराज द्रुपद की राजधानी के बाहर अपनी सेना के साथ इकट्ठे हुए थे। जोरदार संदेश भेजा कि अब मैं आया हूं आपको सबक सिखाने के लिए। तो फिर बड़े नम्रता से राजा द्रुपद ने कहा कि अवश्य आप आइए और मिलिए आपके दामाद से। और राजा हिरण्यवर्मन ने अपने दूतों को भेजा, उनके गिने चुने जो बहुत निकट के सेविकाएं थीं उनको भेजा, और फिर उन्होंने खबर लाई कि नहीं नहीं आपकी बेटी का विवाह एक पुरुष से ही हुआ है। तो तब राजा हिरण्यवर्मन शांत हुए और वापस अपने राज्य में लौट के चले गए, और राजा द्रुपद और उनकी पत्नी भी बड़े सुख का सांस लेने लगे कि बहुत बड़ी मुसीबत टल गई, अब शिखंडी वापस जाने ही वाली थी स्थून के पास पुरुषत्व लौटाने के लिए कि उधर भगवान की योजना से कुबेर जी अपने वाहन में उस वन के ऊपर से गुजर रहे थे। इस सुंदर महल को देखने के बाद नीचे उतरे, अब स्थून को पता चला कि उनके प्रभु कुबेर जी आए हैं, परंतु क्या करते, लज्जा के कारण स्त्री शरीर धारण करके वो कुबेर के सामने नहीं आना चाहते थे। तो कुबेर को बड़ा क्रोध आया कि मैं यहाँ स्वयं आया हूँ और मेरा स्वागत करने के लिए कोई नहीं आया है, कौन है यो व्यक्ति जो यहाँ पे रहता है। तो जैसे उनको पता चला कि उनका सेवक स्थून यहाँ रहता है, तो उन्होंने श्राप दिया कि पहली बात तो इसने मेरा स्वागत नहीं किया, दूसरी बात यक्षों का बड़ा अपमान किया है अपने पुरुषत्व को देकर एक स्त्री बन के, इसलिए मैं इसे श्राप देता हूँ कि ये आजीवन स्त्री ही रहेगा और शिखंडी आजीवन पुरुष ही रहेगी या रहेगा जो भी कहिए। तो फिर कुबेर के जो सेवक थे उन्होंने कहा कि देखिए वैसे स्थून की इतनी बड़ी गलती नहीं है, केवल दया के कारण उसने ऐसे काम किया है, कोई स्वार्थ नहीं था इसमें। तो फिर कुबेर ने कहा तो ठीक है, मैं पूरी तरह से तो मेरे वचनों को बदल नहीं सकता, परंतु इतना कहूँगा कि जब तक शिखंडी जिएगी तब तक वो पुरुष के रूप में रहेगी, शिखंडी के मृत्यु के बाद में फिर स्थून का पुरुषत्व लौट आएगा स्थून के पास। तो इस घटना के बाद अब शिखंडी चले आई स्थून के पास, मैं अब आ गई हूँ या आ गया हूँ आपके पुरुषत्व को लौटाने के लिए। तो स्थून ने जवाब दिया कि नहीं, प्रारब्ध में कुछ ऐसा ही लिखा था कि तुम्हें आजीवन अब पुरुष ही रहना है, तो चले जाओ, ये भगवान की कृपा है तुम्हारे ऊपर। तो स्थून वापस या शिखंडी वापस चली गई, या अब से कहना पड़ेगा कि चले गए, और वापस एक पुरुष के रूप में निवास करने लग गया। अब ये कथा भीष्मदेव को पता था, और भीष्मदेव को यह भी पता था कि वास्तव में शिखंडी का जन्म ही हुआ है उनके देहांत के लिए। ये सब जानते हुए भीष्मदेव निडर रहे। भीष्मदेव ने वैसे जब से अम्बा वहां से छोड़ के गई थी तब से किसी ने किसी को भेजा था उनके ऊपर देखरेख करने के लिए कि अम्बा क्या कर रही है, इसलिए शुरुआत से लेकर अंत तक भीष्मदेव को सारी खबरें मिलती रहती थी, यहाँ तक कि शिखंडी के जन्म की खबर, पुरुषत्व की खबर, पुरुष बनने की खबर, सारी खबरें भीष्मदेव को मिल गई थी। इसलिए भीष्मदेव ने कहा दुर्योधन से ये कहानी बताने के बाद कि अब मैंने व्रत लिया है कि मैं किसी स्त्री के साथ युद्ध नहीं करूंगा, किसी व्यक्ति को अगर स्त्री का नाम है उससे भी युद्ध नहीं करूंगा, और कोई पुरुष भी यदि स्त्री के समान है, स्त्री की तरह है, तो उसके साथ भी मैं युद्ध नहीं करूंगा। अब शिव जी ने अंबा को एक ऐसा स्वर्गीय हार भी दिया था, फूलों का हार, जिसके फूल कभी न मुरझाने वाले थे। तो ये हार जो है जाके उसने द्रुपद राजा के द्वार पे रख दिया था, और कोई उसे छूने के लिए भी डरते थे, क्योंकि भीष्म देव का सामना कौन कर सकता था। तो वह हार वैसे के वैसे पड़ा रहा। और आगे चल के फिर मध्वाचार्य अपने महाभारत तात्पर्य निर्णय में बताते हैं कि वास्तव में फिर ये द्रौपदी या पांचाली ने पहन लिया, और आगे चल के जब स्वयंवर हुआ तो अर्जुन को पहनाया, क्योंकि अर्जुन आगे चल के शिखंडी की सहायता से भीष्म देव की हत्या करने वाले थे। इसलिए जब पांचाली का स्वयंवर हुआ था, जिसकी योजना जिसका आयोजन द्रुपद राजा ने किया था, तो उस समय भीमसेन के बजाय अर्जुन आगे गए थे स्वयंवर में भाग लेने के लिए। तो भीमसेन क्यों नहीं गए और अर्जुन क्यों गए थे, इसके पीछे ये कारण मध्वाचार्य ने बतलाया है। तो खैर, भीष्मदेव ने ऐसे दुर्योधन से कहा कि मैं शिखंडी के सिवाय और सबसे युद्ध करूंगा। और फिर उसके बाद युद्ध की तैयारियां तो हो ही गई थीं, और जैसे ही तैयारी हो गई तो सारे दोनों सेनाएं जो हैं कुरुक्षेत्र के रणभूमि पर खड़े हो गए। फिर आके भगवद गीता का संदेश भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया। दोनों सेनाएं खड़ी थीं बड़े शांति से। देखिए किस तरह से युद्ध हुआ करता था। आजकल ऐसे संभव है, केवल इधर उधर बम छोड़ के चले जाते हैं, भाग जाते हैं, परंतु दोनों सेनाएं बड़े धीरज रख के खड़े रह गए जब तक कि भगवद गीता का संदेश समाप्त नहीं हुआ। जब संदेश समाप्त हुआ फिर अर्जुन तैयार हुए युद्ध करने के लिए। पांडवों का हौसला बढ़ गया, क्योंकि वो देख रहे थे कि अर्जुन युद्ध करने के लिए तैयार नहीं थे। तो जैसे ही युद्ध तैयार होने वाला था, अचानक युधिष्ठिर महाराज अपने रथ से उतरे, अपने कवच आदि और अस्त्र शस्त्रों को नीचे रख दिया और कौरव सेना की ओर चलते गए। चलते चलते जब जा रहे थे तो हाहाकार मच गया दोनों सेनाओं में कि हाय हाय, ये क्या कर रहे हैं महाराज युधिष्ठिर, देखो कितने बड़े कायर हैं। ऐसे लगता है कि वो भी डर के मारे अब भीष्म के पास जा रहे हैं क्षमा याचना करने के लिए, कहने के लिए कि अब हम युद्ध नहीं करेंगे। तो धिक्कार हो ऐसे क्षत्रिय को, धिक्कार हो ऐसे राजा को। तो ऐसे तरह तरह के अपशब्द दोनों सेनाओं के सैनिक करने लगे महाराज युधिष्ठिर के प्रति। अर्जुन, भीमसेन, नकुल, सहदेव भी आश्चर्यचकित रह गए कि युधिष्ठिर महाराज कर क्या रहे हैं। अकेले श्री कृष्ण युधिष्ठिर महाराज के हृदय की बात को जानते थे। मुस्कुराते हुए श्री कृष्ण ने कहा कि कोई चिंता की बात नहीं है, मैं जानता हूं महाराज युधिष्ठिर कहां जा रहे हैं और क्यों जा रहे हैं। वो जानते हैं कि बुजुर्गों के आशीर्वाद लिए बिना कोई कार्य सफल नहीं होता है, इसलिए मंगल का आह्वान करने के लिए उन्होंने ये निश्चय किया है कि वो जाके भीष्म देव से अनुमति लेंगे। भीष्म देव से अनुमति लेने के बाद उनकी कृपा याचना करेंगे, फिर वो आगे बढ़ेंगे। और वैसे युधिष्ठिर महाराज ने भीष्म देव के पास जाके क्षमा याचना की। तब तक भीष्म ने देखा कि युधिष्ठिर महाराज उनके पास आ रहे हैं, अपने रथ से उतरे, जमीन पर आए, युधिष्ठिर महाराज ने जाके उनके चरण कमलों को पकड़ लिया, अपने दोनों हाथों से प्रणाम किया और कहा कि हे पितामह, हमें क्षमा कर दीजिए और हमें अनुमति और आशीर्वाद प्रदान कीजिए कि हम आपके साथ युद्ध कर सकें। तो भीष्म देव ने कहा कि मेरा पूरा आशीर्वाद है हे युधिष्ठिर, यदि तुम नहीं आते मेरे पास आशीर्वाद मांगने के लिए तो मैं तुम्हें श्राप दे देता कि तुम्हारी हार होगी, परंतु तुम मेरे पास आए हो, मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि विजय तुम्हारा ही होगा, यह निश्चित है, इसलिए युद्ध करो, अवश्य मेरे साथ युद्ध करो। फिर युधिष्ठिर महाराज को जब भीष्म देव ने कहा, पूछा कि कोई वरदान मांगना चाहते हो मुझसे, तो युधिष्ठिर महाराज ने कहा कि बस आप हमारे शत्रुओं की ओर से युद्ध कीजिए। देखिए, ऐसे सब चीजें मांगा करते थे, क्षत्रियों के बीच में जो नीति थी वो कुछ निराली ही थी। तो भीष्म देव के हृदय को छू दिए युधिष्ठिर महाराज के शब्द, तो वो कहने लगे कि अरे युधिष्ठिर, कौरवों के पक्ष में रहकर मैं युद्ध तो करूंगा ही तुम्हारे विरुद्ध, परंतु अपने लिए कोई वरदान मांगो। तो जब युधिष्ठिर महाराज ने बात कही सुनी तो उन्होंने कहा कि हे पितामह, फिर आप हमें ये बताइए कि आपको हम कैसे परास्त कर पाएंगे युद्ध में। तो भीष्म देव ने कहा कि यह संभव नहीं है, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो मुझे युद्ध में हरा सकता है, यहां तक कि देवलोक के निवासी भी ऐसा नहीं कर सकते, तो यह संभव नहीं है। तो युधिष्ठिर महाराज ने पुनः पूछा, फिर ये कुछ बताइए कि आपकी हार किस तरह से हो सकती है, भले हम पांडव न कर, कौन कर सकता है, कैसे किया जा सकता है। हे युधिष्ठिर, जब तक मैं नहीं चाहूंगा तब तक मेरी मृत्यु नहीं हो सकती, जब तक मैं नहीं हारना चाहूंगा तब तक मेरा पराजय नहीं हो सकता है। तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मैं इस समय नहीं दूंगा, जब सही समय आएगा तब मेरे पास पुनः आना और उस समय हम तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देंगे। तो युधिष्ठिर महाराज वहां से चल पड़े, भीष्म देव के आशीर्वाद को प्राप्त करके द्रोणाचार्य के पास गए, कृपाचार्य के पास गए, शल्य के पास गए, जो उनके सब बुजुर्ग थे उनकी भी कृपा याचना की, उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया। सब ने कहा कि हे युधिष्ठिर, यदि हमारे पास न आते तुम, हम अवश्य तुम्हें श्राप दे देते कि तुम हार जाओगे, परंतु हमारी हार्दिक आशीर्वाद तुम्हारे साथ में है। तो युधिष्ठिर महाराज अब अपने रथ के ऊपर वापस लौट के आ गए, वहां पर युद्ध प्रारंभ होने ही जा रहा था, और जैसे युद्ध शुरू हुआ तो पहले दिन भयंकर युद्ध हुआ। युद्ध शुरू होने के पहले जब युधिष्ठिर महाराज लौट के आए थे अपने रथ के ऊपर, तो श्री कृष्ण कर्ण के पास गए थे और कर्ण से कहने लगे कि कर्ण, तुमने तो व्रत लिया है कि जब तक पितामह भीष्म युद्ध करेंगे तब तक तुम युद्ध भूमि में नहीं आओगे, तो क्यों ना हमारे पक्ष में तुम नहीं चले आते, हमारे पक्ष में आ जाओ, और वैसे भी तुम कुंती के सबसे बड़े पुत्र हो, यह रहस्य तुम्हें अब पता चल गया है, स्वयं कुंती देवी ने तुम्हें बता दिया है, तो हमारे पक्ष में चले आओ, तुम युधिष्ठिर के बड़े भाई हो, बड़े खुशी से युधिष्ठिर महाराज तुम्हें विश्व सम्राट बनाएंगे, तुम विश्व सम्राट बनके सारे पृथ्वी के ऊपर राज करो। कर्ण ने मना कर दिया कि मैंने दुर्योधन का नमक खाया है, मैं दुर्योधन के प्रति अपमान नहीं कर सकता, गद्दारी नहीं कर सकता। उधर महाराज युधिष्ठिर आए, कौरव सेना का संबोधन करते हुए कहने लगे कि है आप में से कोई जो हमारी ओर हमारे पक्ष में आके युद्ध करना चाहते हैं? तो देखिए ऐसे खुलेआम युद्ध हुआ करते थे। तो दुर्योधन के सब भाई थे युयुत्सु, वो सामने आए कि हाँ मैं धर्म के पक्ष में आके युद्ध करना चाहता हूं। तो सैनिकों ने वाह वाह करना शुरू कर दिया और फिर पहले दिन का युद्ध प्रारंभ हुआ। ऐसा भीषण युद्ध हुआ, भीष्म देव इस तरह से युद्ध कर रहे थे, उन्होंने व्रत तो लिया ही था कि 10,000 सैनिकों की कवच वो हर रोज करेंगे, और ऐसे करते रहे, तहस नहस करने लगे पांडव सेना की। उधर पहले दिन के समाप्ति पर युधिष्ठिर महाराज बहुत चिंतित हो गए कि अब क्या किया जाए। अपने तंबू में आकर वापस दिन की समाप्ति पर श्री कृष्ण से बात करने लगे कि हे कृष्ण, हे केशव, अब देखो जिस तरह से भीष्म हमारी सैनिकों को नष्ट कर रहे हैं, ऐसे लग रहा है कि कोई भी उनका सामना नहीं कर सकता। शायद हम तो वायुदेव, वरुण देव, यमराज को भी परास्त कर दें, परंतु भीष्म देव को परास्त करना अब तो संभव हमारे लिए नहीं लगता है। यहां तक कि उनको देख भी नहीं सकते हैं, जिस तेज गति से वो अपने रथ के ऊपर सवार होकर तीर चलाते हैं, उनके हाथ किस तरह से तीर में जाते हैं और तीर चलाते हैं, इनको देखना भी असंभव है। और केवल इतने सारे क्षत्रियों का विनाश मैं नहीं देख सकूंगा, देखो मेरे भाइयों को भी कितना कष्ट हो रहा है, तो मेरे लिए संभव नहीं है। और हे कृष्ण, ये बताओ क्या केवल भीष्म देव है जिन्होंने ठान लिया है कि उनको क्षत्रिय का कर्तव्य करना है? क्या अर्जुन को क्षत्रिय का कर्तव्य नहीं करना है? देखो आज सारे दिन भर ये स्पष्ट हुआ कि अर्जुन ने युद्ध में अपनी सारी शक्ति नहीं लगाई, पूर्ण हृदय से युद्ध नहीं किया। तो मुझे लगता है हे गोविंद कि वन में जाना ही मेरे लिए अच्छा है, ऐसे युद्ध करके क्या फायदा। हमें तो कोई ऐसी योजना बनानी होगी और इसके लिए आपकी कृपा की आवश्यकता है। श्री कृष्ण ने सुना, कहा युधिष्ठिर, मैं जानता हूं कि तुम युद्ध त्यागने के लिए तैयार नहीं हो इस समय, न ही तुम करोगे। तुम्हारे कर्तव्य तुम डटे हो मैं जानता हूं, परंतु यह सोच लो, निराश नहीं होना, तुम्हारे पक्ष में कितने बड़े बड़े योद्धा हैं, इसलिए तुम्हारे लिए जीत निश्चित है। और याद रखना भविष्यवाणी जो हुई थी पहले कि शिखंडी आगे चल के भीष्म देव की मृत्यु का कारण बनने वाले हैं, इसलिए निराश नहीं होना। तो फिर युधिष्ठिर महाराज का हौसला बढ़ गया, उनके सेनापति धृष्टद्युम्न से कहने लगे कि हे धृष्टद्युम्न, सेना को पुनः तैयार करो। और क्रौंच व्यूह में उन्होंने अगले दिन अपने सेना का आयोजन किया और दूसरे दिन का युद्ध शुरू हो गया। और भीष्म देव बस वैसे ही तूफान की तरह लड़े जा रहे थे, कोई भी उनका सामना नहीं कर पा रहा था। पांडव सेना में पुनः तहस नहस करने लगे, हलचल मच गई सारे पांडव सेना में। और अर्जुन ने भी बड़े क्रोध से युद्ध किया, भीष्म देव का सामना भी किया, और अर्जुन के क्रोध भरे युद्ध ने में ऐसे हुआ कि कौरवों की सैकड़ों हजारों सैनिक नष्ट हो गए। अब दुर्योधन बड़े चिंतित होने लगे, भीष्म देव के पास आए और कहने लगे कि हे पितामह, ये क्या हो रहा है? ऐसे लग रहा है कि अर्जुन एक ऐसे किसान की तरह है जो अपनी फसल काट रहा है, इस तरह से वो हमारे सैनिकों को नाश किए जा रहा है, और आप ऐसे ही खड़े हो यदि आप चाहो तो आसानी से अर्जुन को परास्त कर सकते हो। तो भीष्म देव ने सर झुकाया और कहा, धिक्कार हो हमारे क्षत्रिय कर्तव्य के ऊपर, क्षत्रियों को क्या नहीं करना पड़ता है, अपने ही प्रिय व्यक्तियों के विरुद्ध युद्ध करना पड़ता है। और फिर अर्जुन और भीष्म देव के बीच में धुआंधार जबरदस्त युद्ध हुआ। उस दिन के अंत तक दोनों बराबर के रहे। फिर तीसरे दिन की शुरुआत हुई और अर्जुन ने और बड़े क्रोध से युद्ध करके पांडव कौरव सेना में बहुत हलचल मचा दिया। कौरव इधर उधर बिखर गए। दुर्योधन ने भीष्म देव के पास आकर कहा कि हे पितामह, आपकी उपस्थिति में देखो हमारे सैनिक कैसे इधर उधर भाग रहे हैं, कैसे बिखर गए हैं। केवल एक व्यक्ति अर्जुन ने हमारी सेना को इतर तितर कर दिया है, ये कैसे संभव है? आप तो समर्थ हैं, आप तो बड़े आसानी से इस पांडव सेना की बात तो दूर है, आप सारे समस्त ब्रह्मांड के बड़े बड़े योद्धाओं को भी आप परास्त कर सकते हैं, तो ऐसे कैसे हो रहा है? इसका मतलब है कि आप पक्षपात कर रहे हो, पांडवों के प्रति आपके हृदय में एक कोमल स्थान है, इसलिए आप पूरी ताकत लगा के इनके साथ युद्ध नहीं कर रहे हो। इस तरह से दुर्योधन बार बार भीष्म देव को टोकते रहते हैं और भीष्म और दुर्योधन के कटु वचन बहुत धार वाले तीर की तरह भीष्म देव के हृदय को चुभ जाते और भीष्म देव को सुनना पड़ता। और भीष्म देव कहते, दुर्योधन जरा समझ लो, मैं तो मेरी पूरी ताकत लगा के युद्ध कर रहा हूं, परंतु मैंने तो तुम्हें पहले से ही कह दिया था कि पांडवों की शक्ति कितनी है, उनके ऊपर विजय कोई प्राप्त नहीं कर सकता। दुर्योधन कहने लगे, हे पितामह, यदि आपने युद्ध के पहले ही मुझे बता दिया होता कि आप पूरी ताकत लगा के नहीं करने वाले हैं, हालांकि आप कह रहे हो कि आप कर रहे हैं, परंतु हम देख रहे हैं कि यदि आप वास्तव में पूर्ण ताकत लगा के युद्ध करते तो अर्जुन आज ये नहीं कर बैठता। यदि आप युद्ध के पहले मुझसे ऐसा कह देते तो मैं कर्ण से विचार विमर्श करके कुछ निर्णय लेता। तो भीष्म देव बड़े हैरान हो गए, अरे दुर्योधन, कितनी बार मैंने तुमसे कहा है और आज भी उसी बात को दोहरा रहा हूं, अनगिनत बार तुमसे मैंने कहा है कि पांडवों के ऊपर विजय प्राप्त करना संभव नहीं है, फिर भी मैं और एक बार प्रयत्न करूंगा क्योंकि तुम्हारा साथ में नहीं छोड़ूंगा। तो चलो, मैं इतने ताकत लगा के आज युद्ध करूंगा कि तुम देखना मैं कैसे तहस नहस मचा देता हूं सारे पांडव सेना में। तो उसके बाद भीष्म देव ने तूफान की तरह युद्ध कर लिया, जैसे तूफान के सामने बड़े बड़े पेड़, इमारतें इत्यादि सब गिर जाते हैं। बड़े तूफान जब आते हैं तो बड़े बड़े हाथियों को भी उड़ाकर ले जाते हैं। तो वैसे भीष्म देव के सामने सैकड़ों सैकड़ों हजारों सैनिक, हाथी, घोड़े, रथ आदि सब नष्ट हो गए। और यद्यपि पांडव सेना नष्ट होती जा रही थी, अर्जुन चकाचौंध होकर देखते रह गए भीष्म देव के कारतूत कि ऐसा युद्ध, भीष्म देव जैसे योद्धा कोई नहीं है। क्षत्रियों में ये एक प्रथा हुआ करती थी कि सामने का प्रतिद्वंद्वी क्यों न हो, शत्रु भी क्यों न हो, परंतु उसकी दक्षता को देखकर, उसके युद्ध में निपुणता को देखकर, उसकी शूरवीरता को देखकर दोनों पक्ष के सैनिक वाहवाकार करते थे, वाह क्या शूरवीरता प्रदर्शित की इसने। तो भीष्म देव के शूरवीरता को और दक्षता को देखकर अर्जुन वास्तव में आश्चर्यचकित हो गए, लेकिन सोचा कि क्या करें। फिर से अर्जुन ने अपने क्षत्रिय धर्म को धिक्कारना शुरू किया, धिक्कारो हमारे क्षत्रिय धर्म के ऊपर, मेरे प्रिय पितामह के प्रति मुझे अब युद्ध करना पड़ रहा है। लेकिन फिर अपने मन को समझा लिया, छोड़ो इन सब विचारों को, मुझे मेरा कर्तव्य करना चाहिए। और फिर से केशव से कहा कि हे केशव, मेरा युद्ध ले चलो भीष्म देव के पास, क्योंकि कृष्ण ने अर्जुन को कहा था कि अर्जुन तुम्हारे वचन को भूल गए। तो इससे हौसला बढ़ गया अर्जुन का और बहुत तीव्रता से युद्ध करना प्रारंभ किया अर्जुन ने भीष्म देव के प्रति। उनका धनुष तोड़ दिया, भीष्म देव ने दूसरा धनुष उठाया उसे भी तोड़ दिया, और दोनों के बीच में ऐसे भयंकर युद्ध होने लगा। और श्री कृष्ण इतनी दक्षता से अर्जुन के रथ को चला रहे थे, कभी कभी गोल गोल घुमा रहे थे, और जैसे भीष्म तीरों की वर्षा बहा रहे थे अर्जुन और कृष्ण की ओर, तो वो इस तरह से रथ को लिए जा रहे थे इधर उधर कि भीष्म देव भी चकाचौंध रह गए। उधर श्री कृष्ण भी देख रहे थे कि भीष्म कितने शूरवीरता से युद्ध कर रहे हैं। और ऐसे चलता गया। भीष्म देव और अर्जुन के भीषण युद्ध को देखकर अनेक राजाएं जो हैं दोनों पक्षों में, कोई भीष्म की सहायता के लिए आए तो कोई अर्जुन की सहायता के लिए आए, और फिर ये एक सामान्य युद्ध हो गया। ऐसे भयंकर युद्ध कुरुक्षेत्र में हुआ जिसके सामने यहाँ 20वीं सदी के जो पहले दूसरे विश्व युद्ध कोई छोटे मोटे झगड़े के समान प्रतीत होते हैं। तो कितने 64 करोड़ योद्धाओं की मृत्यु हुई उन 18 दिनों में। ऐसा तूफान शायद ही इतिहास में कहीं हुआ होगा। भगवान श्री कृष्ण की योजना तो थी इसके पीछे। तो खैर, तीसरे दिन का अंत भी हुआ, और इस तीसरे दिन के अंत में दोनों बराबर के रहे, परंतु कौरवों का नुकसान ज्यादा हुआ था। चौथा दिन प्रारंभ हुआ, चौथे दिन में भी पांडवों का पक्ष ज्यादा मजबूत रहा। भीमसेन ने भी काफी तहस नहस कर दी। दुर्योधन के 14 भाइयों का वध की मृत्यु हो गई। दुर्योधन बहुत निराश हो गया इसके बाद, और भीष्म देव से कहने लगे पुनः कि हे भीष्म, हे पितामह, आप हमारे पक्ष में होने के बाद भी ऐसे हो रहा है। दुर्योधन की आंखों में आंसू थे, बहुत दुख था दुर्योधन को। 14 भाइयों की मृत्यु हो चुकी। क्षत्रियों का कर्तव्य वास्तव में बहुत मुश्किल, बहुत कठिन है। पहली बात तो ये है कि अपने पक्ष में रहने वाले सगे संबंधियों की, मित्रों की मृत्यु देखना, और साथ साथ ऐसा धर्म हुआ करता था क्षत्रियों का कि यदि अपने पिता से भी युद्ध करना पड़े, अपने चाचा से, अपने गुरु से भी युद्ध करना पड़े तो भी क्षत्रिय को करना पड़ता था। और इसलिए विपक्ष में भी जितने योद्धा थे वो सब सगे संबंधी थे, तो उन सब की मृत्यु को देखकर, अपने पक्ष वाले को देखकर कितना दुख कौरवों को और पांडवों को प्रतिदिन होता रहा। फिर दुर्योधन भीष्म देव से कहने लगे कि देखिए द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, अश्वत्थामा जैसे महान योद्धा हैं, आपकी बात तो क्या कहने, आप सब मेरे लिए प्राण त्यागने के लिए तैयार हैं। इतनी हमारी शक्ति है कि अपार है, हमारी सेना के सामने पांडव सेना तो कुछ भी नहीं है। आप हमारे पक्ष में हैं, द्रोणाचार्य हैं, साथ साथ में हमारे 11 अक्षौहिणी वर्ग हैं, पांडवों के केवल 7 हैं। हर दृष्टि से हम मजबूत हैं, हम श्रेष्ठ हैं, फिर भी कैसे हो रहा है हे पितामह। तो पांडवों का जो जीत है, पांडवों की जीत जो है इस समय, इसके पीछे रहस्य क्या है, अब देखिए, दुर्योधन की गणना भौतिक थी, क्योंकि दुर्योधन भौतिकतावाद का पालन करने वाला आदमी था। भगवान में, श्री कृष्ण में बिल्कुल कोई विश्वास नहीं था। आपको याद होगा कि जब युद्ध शुरू होने के पहले दोनों दुर्योधन और अर्जुन द्वारका आ पहुंचे थे श्री कृष्ण की सहायता मांगने के लिए, तो अर्जुन आके बैठ गए श्री कृष्ण के चरणों में। दुर्योधन जब आए, उन्होंने देखा कि अर्जुन बैठे हुए हैं चरणों में, तो वो जाके सीधे श्री कृष्ण के सर के पास बैठ गए। श्री कृष्ण सर नींद से जागे, दोनों को देखा, परंतु अर्जुन को पहले देखा क्योंकि वो चरणों में बैठे हुए थे। दोनों से पूछा, अरे क्या बात है, क्या चाहते हो? तो जब उन्होंने बात सुनी कि अब युद्ध शुरू होने वाला है और दोनों ही उनकी सहायता मांगने के लिए आए हैं, तो दुर्योधन ने, श्री कृष्ण ने कहा कि मांगो, या तो मेरी एक अक्षौहिणी वर्ग सेना मिलेगी, या तो मैं अकेले आऊंगा, परंतु मैं शस्त्र उठाऊंगा नहीं, अस्त्र शस्त्र हाथ में उठाऊंगा नहीं, तो आप में आप चयन करो। दुर्योधन, अर्जुन छोटा है तुमसे, इसलिए उसे पहले पूछना चाहिए। साथ साथ में मैंने अर्जुन को पहले देखा, तो अर्जुन तुम मांगो, क्या चाहते हो? तो अर्जुन का मन स्पष्ट था, दुर्योधन का मन भी स्पष्ट था, दोनों का मन स्पष्ट था कि वो क्या चाहते हैं। अर्जुन श्री कृष्ण को चाहते थे। अर्जुन ने कहा, मुझे आपकी सेना से कुछ लेना देना नहीं है, मुझे आपसे मतलब है, आप मेरे साथ रहोगे तो हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। दुर्योधन मन ही मन सोच रहा था, ये अर्जुन कितना मूर्ख है, यहां एक अक्षौहिणी वर्ग है सेना के, नारायणी सेना के, और ये अकेले कृष्ण क्या कर सकते हैं, है ये एक ही आदमी। तो दुर्योधन और अर्जुन के दृष्टिकोण में कितना बड़ा अंतर था। अर्जुन का दृष्टिकोण भक्ति का दृष्टिकोण था, ज्ञान का दृष्टिकोण था। वो समझते थे कि जब तक श्री कृष्ण हमारे पास हैं तब सब कुछ है, जैसे कि भगवद गीता में भी संजय ने घोषणा की थी, यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धर तत्र श्री विजयो भूति ध्रुवानी तीर मतिर मम। तो जहां योगेश्वर श्री कृष्ण हैं, जहां गांडी बाण धारण करने वाले अर्जुन हैं, वहां पे विजय, नीति, ऐश्वर्य सब कुछ होगा। तो अर्जुन को यह पता था, कृष्ण भक्तों को यह पता होता है क्योंकि श्री कृष्ण में उनका पूर्ण विश्वास होता है। परंतु दुर्योधन की श्रद्धा ऐसी नहीं थी, दुर्योधन का विचार भौतिक था, तो उसकी गणना भी इस प्रकार से थी। इसलिए नारायणी सेना लेके उसने, दुर्योधन ने सोचा कि सैनिकों की संख्या मेरी अधिक है, इसलिए मेरी जीत होनी चाहिए। ये तो भौतिक दृष्टिकोण है। इसलिए जब अब तीसरे दिन के अंत में भी और चौथे दिन में भी जब पांडवों का हाथ ऊपर था, तो दुर्योधन थोड़ा भ्रमित हो गया कि हमारी सेना इतनी बड़ी होने के बाद भी और भीष्म द्रोणाचार्य जैसे लोग होने के बाद भी ऐसे कैसे हो रहा है। तब भीष्म देव ने हैरान होके, पुनः हैरान होके कहा, अरे दुर्योधन, पहले भी कितनी बार तुम्हें बता चुका हूं, अब भी पुनः बताता हूं, क्या पहले मैंने तुमसे नहीं बताया है कि पांडवों को परास्त नहीं किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है? कितनी बार तुमसे मैं ये कहूंगा, मैंने कितनी बार तुम्हें उपदेश दिया और अन्य कितने बुजुर्गों ने उपदेश दिया, तुम्हारी माता गांधारी ने कहा, तुम्हारे पिता धृतराष्ट्र ने कहा, विदुर जी ने कहा, स्वयं श्री कृष्ण ने कहा, अनेकों ने तुम्हें उपदेश दिया कि पांडवों से युद्ध नहीं करना, वैर को त्यागो, उनसे दोस्ती का एक प्रस्ताव रखो और बड़े सुख से उनके साथ में रहो, लेकिन तुमने हमारी एक नहीं मानी, अब भुगतो तुम्हारे इस निर्णय को, अब क्या किया जा सकता है, तो कोई उपाय नहीं है। मैं तो बोल बोल के थक गया हूं हे दुर्योधन, कि शांति के सिवाय और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। फिर भी मैं एक और बार प्रयास करूंगा। इस समय अन्य राजा भी वहां एकत्र हुए थे। फिर वो कहने लगे, हे दुर्योधन, और अन्य राजाओं को भी संबोधन करते हुए कहने लगे कि देखो, एक बार एक कथा मैं बताता हूं जो मैंने स्वर्ग में सुना था। ऐसे कोई भी राजा नहीं है जो कि श्री कृष्ण का सामना कर सकता है। पांडवों की जीत निश्चित क्यों है? क्योंकि श्री कृष्ण उनके पक्ष में है। जहां श्री कृष्ण रहेंगे वहां विजय होना ही होना है। इसलिए इसमें कोई संशय नहीं होने चाहिए हमारे मन में। दुर्योधन, तुमने पूछा था कि पांडवों के विजय का रहस्य क्या है, तो यह है रहस्य। रहस्य यह है कि श्री कृष्ण उनके पक्ष में है, श्री कृष्ण की कृपा दृष्टि उन पर है। जब मेरी माता गंगा देवी मुझे स्वर्ग लोक ले गई थी, तो वहां मैंने एक कथा सुनी थी कि एक बार भूमि देवी बड़ी पीड़ित अवस्था में ब्रह्मा जी के पास आई और कहने लगे कि हे प्रभु, मेरी रक्षा कीजिए। और इसका कारण क्या था? कारण यह था कि पृथ्वी लोक के ऊपर जो क्षत्रिय थे वो बहुत दुष्ट हो गए थे और उनका बोझ पृथ्वी माता के लिए असहनीय हो गया था। भूमि देवी ब्रह्मा जी से कहने लगी कि देवताओं ने जिन दैत्य और दानवों की हत्या की थी, उनका जन्म अब पृथ्वी लोक पे हुआ है, क्षत्रिय योनियों में। अब क्षत्रिय समाज में सारे बड़े हुए हैं और इनका बोझ मुझे सहन करना बहुत मुश्किल हो गया है, इसलिए आप ही मेरी रक्षा कर सकते हैं। तो उधर ब्रह्मा जी बड़े चिंतित हुए, तो ले गए भूमि देवी को क्षीरोदक सागर पर। वहां भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी के द्वारा भूमि देवी को और अन्य देवताओं को आश्वासन दिलाया कि वो शीघ्र ही प्रकट होने वाले हैं और ऐसे पृथ्वी का बोझ कम कर देंगे। वैसे भीष्म देव जब ये इतिहास का वर्णन करते थे, वो जानते थे कि दुर्योधन ऐसे प्रवचनों के को इतना प्रिय नहीं मानते हैं, इतने कोई आदि नहीं थे, उत्सुक नहीं थे ये सब इस तरह के प्रवचन सुनने में। फिर भी भीष्म देव ने अपना कर्तव्य किया, ये इतिहास बताया और फिर दुर्योधन से कहने लगे कि दुर्योधन, वही भगवान अब यहां प्रकट हुए हैं कृष्ण के रूप में। तो यहां जो हमारे समक्ष श्री कृष्ण उपस्थित हैं, वो वही भगवान विष्णु हैं। भगवान विष्णु और श्री कृष्ण में कोई भी अंतर नहीं है, उनको भिन्न नहीं समझना। भगवान श्री कृष्ण, ये श्री कृष्ण स्वयं एक साधारण आदमी नहीं है, स्वयं भगवान होने के कारण उनका सम्मान करो। तुमने ये सुना होगा कि श्री कृष्ण और अर्जुन नर नारायण ऋषि के रूप में प्रकट हुए हैं। और ये जान लो कि जितने अन्य राजा हैं जो उनके पक्ष में युद्ध कर रहे हैं, वो भी सब देवताओं के ही अंश हैं। और ये पांडव कौन है? ये पांडव भी कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, ये सब अपने पूर्व जन्मों में इंद्र रहे हैं, देवलोक के राजा इंद्र रहे हैं। ये सब भगवान श्री कृष्ण के पार्षद हैं, उनके भक्त हैं ये, इसलिए इनको भी साधारण नहीं समझना। और इनके माध्यम से भगवान श्री कृष्ण अपनी दिव्य योजना को पूर्ण करेंगे, संपन्न करेंगे। भगवान श्री कृष्ण का उद्देश्य क्या है? कि पृथ्वी लोक के ऊपर जो असुरों का बोझ है उसे नष्ट करना, कम करना, पृथ्वी का बोझ हल्का करने में उन्होंने पांडवों की सहायता ली है। और ये असुर कौन है, विशेष करके जो हमारी सेना में तुम्हारे पक्ष में जो राजाए हैं, ये दुर्योधन, इन सब का वध होना है, तो ये निश्चित ही जान लो। इसलिए ऐसे अच्युत भगवान श्री कृष्ण, जिनका पतन कभी नहीं होता है, जिनकी अपार शक्ति है, जो अक्लिष्ट कर्मण है, जो अपने कार्यों में कभी थकते नहीं हैं, ऐसे भगवान श्री कृष्ण के शरण में जाओ। तो उनको साधारण व्यक्ति नहीं मानना। बुजुर्गों ने ऐसे कहा है कि जो व्यक्ति श्री कृष्ण के भगवत्ता को स्वीकार नहीं करता, वो केवल एक पापी है, एक मूर्ख है। इसलिए हे दुर्योधन, मेरी बात को स्वीकार करो, अभी भी समय है, अभी पांडवों के साथ एक समझौता करो, सुख और शांति से अपने भाइयों के साथ में रहो। दुर्योधन सोच में पड़ गए, कृष्ण भगवान, ठीक है भगवान हो भी, फिर भी वो पांडवों का पक्ष क्यों लेंगे, मेरा पक्ष क्यों नहीं लिया उन्होंने, यदि भगवान है भी तो। और वैसे मैं अधार्मिक व्यक्ति थोड़ी हूं, मैं भी तो न्याय के पक्ष में हूं, मेरे खिलाफ कौन ऐसे शिकायत कर सकता है। वैसे लोग तो बहुत कुछ कहते हैं, भीष्म देव कहते हैं, द्रोणाचार्य ने कहा है, अनेकों ने कहा, श्री कृष्ण ने कहा, परंतु मुझे तो नहीं लगता कि मैं अधर्मी व्यक्ति हूं, मैं तो न्याय के सिद्धांत पर चलता हूं। फिर भी मन में एक जिज्ञासा या उत्सुकता जागृत हो गई दुर्योधन की, भीष्म देव से कहा, श्री कृष्ण के बारे में मुझे और कुछ बताओ। तो भीष्म देव बड़े प्रसन्न हुए कि चलो दुर्योधन कुछ श्री कृष्ण के बारे में सुनना चाहते हैं। तो कहने लगे, दुर्योधन, जैसे मैंने मेरे गुरुजनों से सुना है, नारद जी हैं, मार्कंडेय ऋषि हैं, व्यास देव जी हैं, परशुराम जी हैं, वैसे मैं तुम्हें सुना रहा हूं, और ये जितने भी संत हैं, इन सब ने स्वीकार कर लिया है कि श्री कृष्ण ही परम सत्य है। भगवद गीता में भी अर्जुन ऐसे ही कहते हैं, परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमं भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदिदेवम अजम विभुम आहुस्वाम ऋषः सर्वे देवर्षि नारदस्तथा असितो देवलो व्यासः स्वयं चैव ब्रवीषि मे। कि हे कृष्ण, आप ही परम ब्रह्म हैं, आप ही परम धाम हैं, आप ही पवित्र हैं, परम पवित्र हैं, आप ही आदि देव हैं, आप ही सर्वस्व हैं, और ये केवल मैं नहीं कह रहा हूं, आहुस्वाम ऋषः सर्वे, समस्त ऋषियों की घोषणा भी ऐसे ही है। और कौन है ये ऋषि, देवर्षि नारद, असित देवल ऋषि, व्यास देव, इन सब का मत ऐसे है। और हे कृष्ण, स्वयं च एव ब्रवीषि मे, आप स्वयं भी कह, आपने घोषणा कर दी है कि आप ही परम सत्य हो। तो ये बड़े बड़े ऋषि जो हुए हैं और जो हैं, इनका भी मत ऐसे ही है। तो भीष्म देव ने आगे कहा कि हमें जान लेना चाहिए हे दुर्योधन, कि श्री कृष्ण ही हमारे गति हैं, साक्षी हैं, प्रभु हैं, भर्ता है, वो हमारे शुभ चिंतक हैं, हमारे मित्र हैं, तो उनका शरण क्यों नहीं ग्रहण करते, तो क्यों नहीं उनको अपना शुभ चिंतक मानते। मैं तो समझता हूं कि तुम्हारा हृदय भी एक राक्षस का हृदय है, दुष्ट विचारों से भरा हुआ है तुम्हारा हृदय, तुम केवल अज्ञान में डूबे हुए हो, तुम केवल अपना स्वार्थ चाहते हो, यह तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी है, इसलिए तुम श्री कृष्ण को नहीं जान पाओगे कभी भी। जिसके हृदय में काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य इत्यादि भरा रहता है, वो कभी भी श्री कृष्ण को जान नहीं सकता। तत्वतः श्री कृष्ण को जानने के लिए एक शुद्ध हृदय चाहिए। तो हे पुत्र, कृपया इस शुद्ध दृष्टि को, इस भक्ति में दृष्टि को जागृत करने का प्रयास करो, जिसके द्वारा तुम्हें शाश्वत सुख की प्राप्ति होगी। और उसके बाद अपने भाइयों के साथ शांति का समझौता कर लो, प्रेम से उनके साथ रहो। ये निश्चित जान लो, तुम इस युद्ध में विजय प्राप्त नहीं कर पाओगे, केवल दुख और पराजय ही पाओगे। और अन्य जितने भी राजाएं वहां उपस्थित थे, उनके आंखें खुल गईं भीष्म देव के प्रवचन को सुन के। और सभी लोग केशव या श्री कृष्ण को परम सत्य मानने लगे। और दुर्योधन के मन में भी थोड़े विचार घूमने लगे, परंतु अब बहुत देर हो चुका था। जो भी हो, श्री कृष्ण भगवान भी क्यों न हो, परंतु बात तो ये है कि पांडव मेरे शत्रु हैं और श्री कृष्ण उनके पक्ष में है। तो भले वो भगवान हो, जो भी हो, उनके साथ मुझे युद्ध करना चाहिए। और वैसे भी भीष्म देव ने बताया है कि दैत्य दानव जो हैं वो यहाँ क्षत्रिय के रूप में आए हैं, पुनर्जन्म लिया है उन्होंने, तो मेरे पक्ष में अनेक दानव भी होंगे, तो दानव समाज से कृपा मिलेगी, कोई शक्ति मिलेगी हमें भी, तो हम युद्ध करेंगे। फिर भी विचित्र बात यह है कि दुर्योधन जब उस दिन रात को सोने के लिए गए, चौथे दिन के अंत में, तो भीष्म देव के वचन दिमाग में घूम रहे थे। सोच रहे थे, चलो श्री कृष्ण भगवान हैं, ठीक है, चलो प्रणाम कर ही देते हैं, कोई नुकसान तो होगा नहीं प्रणाम करने से, उनको भला हो सकता है, हमारे फायदे के लिए भी हो सकता है। तो खैर एक प्रणाम सा किया कुछ और फिर सो गए। पांचवें दिन, छठे दिन, सातवें दिन ऐसे ही धुआंधार युद्ध चलता गया। परंतु इन तीन दिनों में जो साधारण सैनिक थे, बड़ी संख्या में उनकी हत्या तो हुई, परंतु कोई बड़े बड़े राजा या सेनापति उनकी मृत्यु हुई नहीं। और दुर्योधन जैसे कि प्रतिदिन करता था, भीष्म और द्रोणाचार्य के पास आते, उनको हैरान करते थे, आप पूरी ताकत लगा के युद्ध नहीं कर रहे हो, आप पक्षपात कर रहे हो, पांडवों के प्रति आपके हृदय में बहुत ज्यादा स्नेह होने के कारण आप पूरी तरह से युद्ध नहीं कर रहे हो। तो दोनों ने, भीष्मदेव और द्रोणाचार्य ने, बहुत प्रयास किया दुर्योधन को समझाने के लिए कि ऐसा नहीं है, परंतु दुर्योधन बिल्कुल जिद्दी ही ठहरा। दुर्योधन इतना हट्टी था कि कोई भी दुर्योधन के संकल्प को बदल नहीं सकता था। उसने जब ठान लिया था कि युद्ध होना है तो होकर ही रहेगा, यहां तक कि दुर्योधन की माता गांधारी ने भी पहले कह दिया था कि लगता है तुम्हारा जन्म केवल हमारे वंश के नाश के लिए ही हुआ है, तुमने लगता है वचन लिया है कि अपने वंश का नाश करके ही रहोगे। तो जिद्दी स्वभाव, जो बुजुर्गों के सामने झुकता नहीं है, जो गुरुजनों से कुछ दो अच्छी बातें सुनने के लिए तैयार नहीं होता, तो ऐसे स्वभाव से किसका मंगल हो सकता है, किसी का नहीं। आठवें दिन भीमसेन के द्वारा और अन्यों के द्वारा भी 17 और दुर्योधन के भाई मारे गए। भीमसेन के पुत्र घटोत्कच ने उस दिन तहस नहस मचा दिया सारे कौरव सेना में। स्वयं दुर्योधन के प्रति भी ऐसे आक्रमण किया कि दुर्योधन की जान भी खतरे में थी। तो भीष्म देव ने देखा, द्रोणाचार्य से कहा कि दुर्योधन की रक्षा के लिए आप जाइए, वहां इरवान जो है उलूपी के द्वारा अर्जुन के पुत्र, उनका देहांत हो गया युद्ध भूमि पर। अर्जुन को खबर पहुंची, अर्जुन बहुत दुखी हो गए। उधर दुर्योधन भी बहुत दुखी था क्योंकि उसके 17 भाइयों की हत्या हो गई थी। वह कर्ण के पास गए उस आठवें दिन के अंत में, और कर्ण ने देखा, कर्ण तो युद्ध नहीं कर रहे थे जैसे हमने कहा है, तो दुर्योधन को देख के पूछा कि आज का दिन कैसे रहा हे राजन। तो फिर सारी बातें बताई दुर्योधन ने। तो कर्ण ने कहा कि आप कहिए भीष्म देव पितामह से कि वो हट जाए युद्ध से, यदि भीष्म देव युद्ध भूमि से हट जाए तो मैं प्रवेश करूंगा और मैं वचन देता हूं कि मैं सारे पांडवों की हत्या करूंगा। वैसे कर्ण जानता था कि वो पांडवों की हत्या नहीं कर पाएगा। वैसे तो कर्ण ने कुंती माता को वचन दिया ही था। जब कुंती माता युद्ध के पहले कर्ण के पास आई थी और कर्ण को रहस्य का खुलासा कर दिया था कि देखो तुम मेरे ही पुत्र हो, तब कर्ण से वचन लिया था। कुंती देवी ने कहा कि तुम मेरे पुत्रों को नहीं मारना, तुम्हारे भाई हैं वो। तो कर्ण ने कहा कि ठीक है, मैं अन्यों की हत्या नहीं करूंगा सिवाय अर्जुन के, अर्जुन की हत्या मुझे करना ही होगा, क्योंकि कर्ण के समस्त दुखों का कारण केवल अर्जुन थे, इसलिए अर्जुन को छोड़कर मैं अन्यों की हत्या नहीं करूंगा। तो वैसे कर्ण ने तो वचन दे ही दिया था अपनी माता को, परंतु अब वचन दे रहे थे दुर्योधन को कि मैं सारे पांडवों की हत्या करूंगा, भीष्म देव को पीछे हटने तो दो, फिर देखो मैं क्या कमाल करता हूं युद्ध भूमि पर। तो खैर, फिर दुर्योधन वहां आगे चल के भीष्म देव के पास आए। जब भीष्म देव ने दुर्योधन के घाव देखे, करुणा हुई, उठे, स्वयं अपने हाथों से मलम आदि लगा के थोड़ी राहत पहुंचाई दुर्योधन को अपने कष्टप्रद अवस्था में, और फिर पुनः दुर्योधन ने अपना भाषण शुरू किया कि हे पितामह, आप पूरी ताकत नहीं लगा रहे हो, यदि आप पूरी ताकत लगाते तो आज ये दशा नहीं हुई होती। देखो, और हमारे 17 भाई जो हैं उनकी मृत्यु हो गई, आप तो असमर्थ नहीं हैं, आपकी आप चाहो तो आप अवश्य ऐसे कर सकते हो। हम यहां देख रहे हैं कि हम पांडवों को रोकने के लिए, अर्जुन को रोकने के लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो कृपया कल तो कम से कम पूरी ताकत लगा के युद्ध करना। तो भीष्म देव के इस आत्मसम्मान को ये बहुत बार बार ठोस पहुंचती थी। तो फिर भीष्म ने कहा कि देखो, कितनी बार मैं तुम्हें समझाऊं कि मैं अपनी पूरी शक्ति लगाकर युद्ध कर रहा हूं, परंतु श्री कृष्ण उनके पक्ष में होने के नाते मैं अब क्या कर सकता हूं। अपने मन ही मन भीष्म देव सोच रहे थे, मैं जो भी कुछ क्यों न करूं, श्री कृष्ण कुछ न कुछ रास्ता निकालेंगे पांडवों को बचाने के लिए, विशेष करके अर्जुन को बचाने के लिए, इसलिए क्या किया जाए। तो भीष्म देव दुर्योधन से कहने लगे, पांडवों की रक्षा हो रही है क्योंकि वो धर्म परायण है, उनके पक्ष में धर्म के पिता श्री कृष्ण है, इसलिए विजय नहीं हो पाएगा तुम्हारा, न मेरा हो पाएगा उनके ऊपर। तो दुर्योधन कहने लगे, आप तो देवताओं को परास्त कर सकते हो, तो मैं कैसे ये विश्वास कर सकता हूं कि आप 5 मनुष्यों की को परास्त नहीं कर सकते। भले उनके साथ में और बड़े बड़े योद्धा हों, परंतु आप इस काबिल हैं कि देवताओं को परास्त कर सकते हैं, तो पांडवों का सामना नहीं कर सकते आप। तो यदि आप का हृदय पांडवों के प्रति करुणा से इतना ही भर गया है, तो फिर आपसे निवेदन करता हूं कि आप हट जाइए और कर्ण को प्रवेश करने दीजिए युद्ध में। कर्ण ने अभी अभी वचन लिया है कि वो पांडवों की हत्या करेगा। तो भीष्मदेव कहने लगे बड़ी दुखी होकर कि अरे दुर्योधन, मेरा ऐसे तुम बार बार अपमान क्यों कर रहे हो, क्या तुम्हें पता नहीं कि मेरे प्राण भी तुम्हारे हवाले हैं, मेरे प्राण को खतरे में डाल के मैं तुम्हारे लिए इतना कर रहा हूं, और बार बार तुम बोले जा रहे हो कि मैं पूरी ताकत नहीं लगा रहा हूं, क्या तुम्हारे लिए इतना काफी नहीं है कि अर्जुन ने अग्निदेव की इच्छा पूर्ण करने के लिए सारे देवताओं को रोक रखा था, जब खांडव को जलाने की लीला हुई थी, क्या तुम्हें याद नहीं है कि अकेले अर्जुन ने गंधर्वों के ऊपर विजय प्राप्त किया और तुम्हें और तुम्हारे भाइयों को बचाया? उस समय तुम्हारे कर्ण कहां थे? जरा सोचो, जब व्यक्ति अपने अंतिम काल में होता है, मृत्यु के द्वार पर खड़ा होता है, तो अपने होश ठिकाने नहीं रहते हैं, और इसलिए तुम्हारे होश ठिकाने इस समय नहीं है दुर्योधन। तुम ठीक से नहीं समझ पा रहे हो कि तुम्हारा स्वार्थ, तुम्हारा हित किसमें है। तुम केवल अब बके जा रहे हो, बके जा रहे हो। तुम्हारे हृदय में घृणा पांडवों के प्रति इतनी हुई है, तुम्हारी शूरवीरता तुम्हारे घृणा का मुकाबला क्यों नहीं करता है? जितनी घृणा तुम्हारे हृदय में है, उतनी शूरवीरता का भी प्रदर्शन करो। केवल घृणा करने से क्या होगा हे राजन? तो ऐसे काफी जोरदार वचन भीष्म देव ने सुनाए, फिर भी तुम इतना कह रहे हो, इतना मुझे अपमान कर रहे हो। मैं अब वचन लेता हूं कि शिखंडी के सिवाय जो भी मेरे सामने आएगा, मैं उसकी हत्या करके ही रहूंगा। पूरी पूरी ताकत लगा कि मैं कल युद्ध करने वाला हूं। ऐसे क्षत्रिय का कर्तव्य है, क्या किया जा सकता है। फिर भीष्म देव ने ऐसे 5 तीर निकाले, स्वर्ण के थे, और एक रेशम का कपड़ा नीचे रखा। इन 5 तीरों को उस कपड़े के ऊपर रख दिया। फिर भीष्म देव उन तीरों के सामने बैठे, ध्यान में बैठ गए। तत्पश्चात उन्होंने वैदिक मंत्रों का उच्चारण किया और फिर थोड़ी देर बाद दुर्योधन से कहा कि हे दुर्योधन, इन 5 तीरों में मैंने पूर्ण तप का बल प्रदान किया है। अब ये बाण ऐसे हैं कि किसी की भी हत्या कर सकते हैं। अब ये 5 बाण जो हैं, इसका सामना इंद्रदेव भी नहीं कर सकते हैं। अब ये मैंने 5 पांडवों के लिए रखे हैं। अब पांडवों को कोई बचा नहीं सकता। केवल एक व्यक्ति है जो पांडवों को बचा सकते हैं, और वो है श्री कृष्ण। अपने मन ही मन भीष्म देव हंसी रहे थे, इसके बारे में भी कृष्ण कुछ करने वाले हैं। तो मैं वचन देता हूं हे दुर्योधन, कि इन 5 तीरों के द्वारा मैं 5 पांडवों की हत्या करने वाला हूं। तो दुर्योधन के मन में भी संशय हुआ कि श्री कृष्ण शायद, अब श्री कृष्ण की प्रशंसा, इतनी भूरी भूरी प्रशंसा भीष्म देव ने की है, हो सकता है कि वो तीरों को भी कुछ कर दे। तो दुर्योधन ने कह दिया कि हे पितामह, ये तीर आज रात के लिए मुझे दे दीजिए, मैं उनको सुरक्षित रखूंगा, और कल प्रातः काल में युद्ध शुरू होने के पहले आपको ये तीर मैं दे दूंगा। तो भीष्म देव ने कहा ठीक है। दुर्योधन बड़े खुश हो गए कि अब हमारी जीत निश्चित है, और फिर वो अपने तंबू में चले गए, अपने तकिए के पास में रखे ताकि और कोई उसको छीन के उठा के न ले जाए, और फिर वो आराम से सो गए, सोने की तैयारी कर रहे थे। उधर पांडवों के तंबू में चर्चा हो रही थी। यद्यपि पांडवों का हाथ ऊपर था, फिर भी युधिष्ठिर महाराज को बड़ा दुख हुआ था कि इतने सारे योद्धाओं की मृत्यु हो गई। युधिष्ठिर महाराज शुद्ध भक्त थे, इसलिए इनका हृदय करुणा से भरा था। इतना दुख, इतना कष्ट देखने में उनको बहुत कठिनाई हो रही थी। तो सोचने लगे क्या किया जाए, ये जिद्दी दुर्योधन के कारण ये सब हुआ है। लेकिन कौरव जो है इतने निराश हुए होंगे, अब कोई ना कोई तरकीब निकालनी ही होगी उन्होंने, कुछ ना कुछ तो षड्यंत्र रचा ही रहे होंगे, वहां कोई ना कोई रास्ता निकालने का प्रयास कर ही रहे होंगे। तो कृष्ण उधर अर्जुन के पास गए अर्जुन बहुत शोकग्रस्त अवस्था में थे क्योंकि इरावन की मृत्यु हो गई थी, और उन्होंने हौसला बढ़ाया कि अरे अर्जुन तुम क्षत्रिय हो, अब इन सब भावनाओं को हृदय में रख के क्या लाभ होना है, क्या तुम भूल गए, तुमने वचन दिया था कि तुम युद्ध में भीष्म और द्रोणाचार्य को भी सामना करोगे और विजय प्राप्त करोगे, चलो उठो, हौसला खोना नहीं। क्या तुम्हें याद है कि जब तुमने गंधर्वों के प्रति इसके साथ युद्ध किया था, कौरवों को बचाया था, कौरवों को बचाने के बाद विशेष करके जब दुर्योधन को बचाया था, तो उस समय दुर्योधन ने अपने आत्मसम्मान को रखने के लिए तुमसे कहा था कि हे अर्जुन कोई वरदान मांगो मुझसे, और तुमने हंस के कहा था कि हे राजन इस समय मैं नहीं मांगूंगा, जब सही समय आएगा उस समय मैं वरदान मांगूंगा। तो कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन अब वो समय आ गया है, अब जाओ तुम दुर्योधन के तंबू में जाओ और दुर्योधन से 5 तीर मांग लो। तो दुर्योधन निकल पड़े, क्षमा कीजिए, अर्जुन निकल पड़े वहां से, अपने अस्त्र शस्त्र आदि त्याग के पैदल चले, और क्षत्रियों के बीच में जब युद्ध हुआ करता था वैदिक सभ्यता में, तो सूर्यास्त के बाद जब युद्ध रुक जाता था तो आपस में एक दूसरे के तंबू में जाके दोस्तों की तरह बातचीत करते थे, और सूर्योदय के समय जब युद्ध शुरू होता था फिर एक दूसरे की हत्या करने पर लग जाते। ऐसी नीति, ऐसा नहीं कि रात में सोए कोई बम फेंक के भाग गया, ऐसे नहीं होता था। तो वहां गए, सारे सैनिकों ने देखा कि अर्जुन आ रहे हैं, उनका स्वागत किया, दुर्योधन के तंबू में गए, दुर्योधन ने देखा, अरे अर्जुन क्या बात है, कुछ चाहते हो क्या, तुम राज्य चाहते हो, मैं देने के लिए तैयार हूं। परंतु दुर्योधन को पता था कि अर्जुन राज्य कभी मांग नहीं सकता, क्योंकि क्षत्रिय का स्वाभिमान है, कैसे मांग सकता है, क्षत्रिय युद्ध करके ही अपना हक या अपना अधिकार को प्राप्त करता है, तो अर्जुन ऐसे नहीं कर सकता, मालूम था दुर्योधन को, फिर भी दुर्योधन ने ऐसे कह दिया। तो अर्जुन ने कहा नहीं, मैं एक घटना के बारे में तुम्हें याद दिलाने आया हूं दुर्योधन, याद है जब गंधर्वों के साथ युद्ध हो रहा था और गंधर्वों की जीत हो गई थी, तब मैं आया और मैंने गंधर्वों को हरा दिया, और तुम्हें जब बचाया तो तुमने मुझे एक वरदान दिया था, और मैंने कहा था कि सही समय आने पर मैं ये वरदान मांगूंगा, तो अब मैं ये वरदान मांगना चाहता हूं। तो दुर्योधन का हृदय धकधकाने लगा कि अभी क्या मांगने वाला है, मुझे पता है। फिर अर्जुन ने कहा मुझे वो 5 तीर चाहिए, और देखिए इतना भी दुष्ट व्यक्ति थे था दुर्योधन, फिर भी क्षत्रिय सभ्यता का पालन अवश्य करता था, अपने वचन का पालन किया। दुर्योधन ने बिना हिचकिचाए वो 5 तीर उठाए दे दिए। देखिए उस जमाने के असुर भी ऐसे हुआ करते थे, जितने भी हम कथाएं सुनते हैं भले श्रीमद् भागवत में भी क्यों ना हो, हम ये देखते हैं कि जब युद्ध हुआ करते थे भगवान के साथ में, जब हिरण्याक्ष भी युद्ध करते थे, जब एक का अस्त्र गिर जाता था तो दूसरे भी अपने अस्त्र को छोड़कर फिर खाली हाथ युद्ध करने के लिए आ जाते थे। तो खैर दुर्योधन ने समझ लिया कि किस्मत परम है, क्या किया जा सकता है, दे दी अर्जुन को 5 तीर। अब अर्जुन चले गए, वहां पांडव सेना में खुशियां मनाई गई, उधर दुर्योधन तुरंत चले गए, कहां चले गए, भीष्म देव के पास। अब भीष्म देव को खबर दी, जैसे ही भीष्म देव को खबर पहुंची, वैसे दुर्योधन ने रात में घटना के बाद सोचा था कि चलो तीर तो गए सो गए, लेकिन भीष्म देव तो है ना, और अगले दिन जब फिर भीष्म देव के पास सुबह गए और भीष्म को खबर सुनाई, भीष्म मुस्कुराए। उनको पता था कृष्ण कुछ ना कुछ करने ही वाले हैं और श्री कृष्ण ने कर ही दिखाया। और भीष्म देव सोचने लग गए कि ठीक है, यदि श्री कृष्ण ने अपने तीर रखे। वैसे दुर्योधन ने अर्जुन से पूछा था कि ये बताओ कि तुम्हें पता कैसे चला कि ये तीर मेरे पास थे। शायद दुर्योधन के मन में संशय भी आया होगा, कहीं भीष्म देव तो नहीं कहा ना। लेकिन अर्जुन ने कहा, नहीं, श्री कृष्ण ने कहा मुझसे। तब दुर्योधन के मन में श्री कृष्ण के प्रति सम्मान और थोड़ा बढ़ गया। होंग हो सकता है, ये भगवान है, सब जानते हैं, कैसे पता चला उनको। उधर भीष्म देव को जब पता चला, वो तो भक्त हैं, देखो हमारे प्रभु कितने महान हैं, कितने बुद्धिमान हैं। तो भीष्म देव अपने सोच रहे थे, यदि श्री कृष्ण ने ये तीर नहीं भी लिए होते अर्जुन के द्वारा, और कोई तरकीब अवश्य सूझी होती, कोई ना कोई रास्ता निकाला होता श्री कृष्ण ने अवश्य। तो दुर्योधन ने भीष्म देव से कहा कि ये रहे और 5 तीर, इसमें आप शक्ति प्रदान कीजिए। तो भीष्म देव ने कहा, एक बार जो मैंने कर दिया सो कर दिया, अब और शक्ति में और तीरों को मैं ऐसी शक्ति प्रदान नहीं कर सकता हूं। तो उस समय भीष्म देव ने कहा कि ठीक है, मैं अब पूरी शक्ति से युद्ध करने वाला हूं और इतनी तीव्रता से युद्ध करूंगा कि या तो अर्जुन की मृत्यु होगी या श्री कृष्ण को अपना व्रत तोड़ना पड़ेगा। श्री कृष्ण ने मेरा व्रत तोड़वाया है तो अब मैं देखूंगा श्री कृष्ण अपना व्रत कैसे कायम रखते हैं। मन ही मन भीष्म देव का विचार ऐसे था। और दुर्योधन ने दुशासन से कहा कि देखो, आज भीष्म पूरी तरह से युद्ध करने वाले हैं, परंतु केवल शिखंडी को भीष्म देव से दूर रखना है। इसलिए आप सब ऐसे कुछ योजना बनाओ जिससे शिखंडी भीष्म देव के पास नहीं आए। उधर भीष्म देव ने अब अपना वचन ले लिया था। वो जानते थे कि श्री कृष्ण किसी भी हालत में अपने भक्त की रक्षा करने वाले हैं। थोड़े ही दिन पहले 10 दिन पहले 9 दिन पहले ही भगवद गीता समाप्त हो गई थी। उसमें श्री कृष्ण ने ही अर्जुन से कहा था, कौन्तेय प्रतिजानी ही नमे भक्तः प्रणश्यति, कि हे अर्जुन, तुम घोषणा करो कि मेरे भक्त का विनाश कभी नहीं होता है। तो भीष्मदेव स्वयं भक्त हैं, इसलिए वो तो जानते थे कि कृष्ण किसी न किसी तरह से अर्जुन की रक्षा करने ही वाले हैं। परंतु वो देखना चाहते थे कि कैसे अब श्री कृष्ण अर्जुन की रक्षा करेंगे, क्योंकि श्री कृष्ण को अपना व्रत तोड़ना ही होगा। तो वो श्री कृष्ण की भक्त वात्सल्यता के गुण का गौरव बढ़ाना चाहते थे, इसकी ख्याति, भगवान कृष्ण की ख्याति को फैलाना चाहते थे। वो चाहते थे कि श्री कृष्ण का जो प्रेम है उनके भक्तों के प्रति, वो इतना तीव्र है, इतना श्रेष्ठ है कि भगवान अपने भी वचन को तोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। जब व्यक्ति अपने वचन को तोड़ता है तो अपमानित होता है समाज में, तिरस्कृत होता है, पाप है ये वचन तोड़ना। और दूसरे लोग भी निंदा करते हैं कि एक आदमी कैसे है, इसने अपने वचन को तोड़ दिया। परंतु भगवान अन्यों के द्वारा निंदात्मक शब्दों को सुनने के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन अपने भक्तों को कष्ट में नहीं देखना चाहते हैं। तो ये भगवान का स्वभाव है, जिसको भली भांति भीष्म देव जानते थे। और वो श्री कृष्ण के इस भक्त वात्सल्यता के गुण का प्रदर्शन देखना चाहते थे। तो किस तरह से भगवान श्री कृष्ण ने अपने भक्त वात्सल्यता का प्रदर्शन किया, क्या भीष्म देव का वचन वास्तव में टूट गया, क्या भीष्म देव श्री कृष्ण के व्रत को तोड़ने में सफल रहे, यदि आप ये जानना चाहते हैं तो कृपया कल शाम यहीं पर ठीक 6 बजे आप यहाँ पर आइएगा। कथा और 2 दिन बाकी है और जारी रखेंगे, अंततः भीष्म देव के प्राण त्यागने तक की कथा हम आगे बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।